स्वतंत्रता संग्राम में छिंदवाड़ा का योगदान। आप सुन रहे मोबाइल वाणी, मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुलकर। आज इस पावन अवसर पर हमारे साथ शासकीय महाविद्यालय अमरवाड़ा के प्रोफेसर एवं इतिहास संकलन परिषद के सदस्य विजय कुमार गुए जी हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं। नमस्कार गुए जी।
जी नमस्कार दिनकर जी।
गुए जी, जैसा कि आज 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस है और यह स्वतंत्रता हमें एकाएक नहीं मिली, इसके लिए काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा है। कईयों लोगों ने इसमें अपना प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भाग लेकर आजादी में अपना योगदान दिया है। तो हम आपसे जानना चाहते कि संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम में छिंदवाड़ा जिले का कितना योगदान रहा है, इस विषय पर हम आपसे जानना चाहते हैं।
जी, सर्वप्रथम मोबाइल वाणी के सभी श्रोताओं को मैं स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और श्रोताओं के समक्ष अपनी बात रखूंगा कि आजादी के अनेक घोषित एवं अघोषित स्वाधीनता संग्राम सेनानी रहे हैं। कुछ नाम हमें विदित है और कुछ नाम इतिहास के पन्नों पर अभी भी दफन है, जिसे समय समय पर नए शोध करके उजागर किया जाता है। और ऐसा ही प्रयास जब हम करते हैं तो निश्चित ही एक नया इतिहास हमारे सामने आता है। जब मैं इस विषय पर शोध कार्य कर रहा था तो मुझे बहुत सा नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिला है कि छिंदवाड़ा जिले का जो योगदान है वो 1857 की क्रांति के पूर्व शुरू हो जाता है। और मेरा मानना यह है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में यदि क्रांति की अलख जगी है तो वह छिंदवाड़ा जिला है। हम बात कर रहे हैं उस समय की जब 1817 ईस्वी में अप्पा साहब भोसले एवं अंग्रेजों के बीच में नागपुर में सीताबर्डी का युद्ध हुआ था। और जब अप्पा साहब भोसले इस युद्ध में पराजित हुए तो उन्हें कैद कर इलाहाबाद ले जाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जबलपुर के पास से वे जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा से छदम वेश में पलायन कर गए थे, ठीक उसी प्रकार से अप्पा साहब भोसले पलायन करके उनका आगमन हमारे छिंदवाड़ा जिले में होता है। और उन्हें शरण देने का जो कार्य है वह कार्य किया जाता है हरे के जागीरदार चेन शाह के द्वारा। अब देखिए, यह एक नया इतिहास है छिंदवाड़ा जिले का कि इसमें छिंदवाड़ा जिले का योगदान जो 1857 की क्रांति के पूर्व शुरू हो जाता है। अप्पा साहब भोसले को शरण देने के बाद अप्पा साहब भोसले पचमढ़ी की पहाड़ियों की ओर आगे बढ़ते हैं और उस समय उन्हें आवश्यकता होती है रसद सामग्री की और यह रसद सामग्री पहुंचाई जाती है चेन शाह के द्वारा। उनके ऊपर जब अंग्रेज 1,00,000 का इनाम रखते हैं तो भी किसी भी छिंदवाड़ा से लेकर तो पचमढ़ी की पहाड़ियों तक किसी भी जनजातीय समुदाय के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा मुखबिर की भूमिका नहीं निभाई जाती है और कोई भी व्यक्ति उस प्रलोभन में नहीं आता है। जब अंग्रेज इस बात से आश्वस्त हो गए कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने उस रकम को दुगुना कर दिया और राशि 2,00,000 रुपए घोषित की गई। अब सोचिए दिनकर जी, जी उस समय के जो 2,00,000 रुपए है, सन मैं बात कर रहा हूँ 1818 ईस्वी की, उस समय के 2,00,000 रुपए अत्यंत मूल्यवान थे। फिर भी यहाँ क्षेत्र के निवासियों को कि आप उनकी महत्ता देखिए कि इन्होंने अप्पा साहब भोसले के विरुद्ध कुछ भी नहीं बताया, तो यह विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है और यही से क्रांति की शुरुआत होती है। इसके बाद जिस प्रकार से सतपुड़ा ऑब्जर्वर में डॉक्टर पीएस भाटिया जी का लेख प्रकाशित है जिसमें उन्होंने बताया था कि तात्या टोपे का किस प्रकार से छिंदवाड़ा जिले में आगमन हुआ है, इस संदर्भ में पद्माकर जोशी इनका भी एक पुस्तक है सन 1857 में तात्या टोपे, तो उन्होंने भी इस संदर्भ में अपनी बात रखी है कि तात्या टोपे का आगमन छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। और कहीं ना कहीं यही से हमें बगावत की शुरुआत हम छिंदवाड़ा जिले में मान सकते हैं। इसके बाद पृष्ठभूमि बनकर तैयार होती है महात्मा गांधी जी के छिंदवाड़ा जिले में आगमन।
जी, जैसे कि आपने इतिहास के उन पन्नों को पलटा है, इससे हम यह कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 से भले ही हुई हो, लेकिन उसमें छिंदवाड़ा का योगदान उससे पहले का भी रहा है।
जी बिल्कुल निश्चित कह रहे हैं आप, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले के अलावा मैं नागपुर पर भी शोध कार्य कर रहा हूँ। इसी संदर्भ में जब मैं भोसला शासकों के संदर्भ में अध्ययन कर रहा था तो मुझे यह तथ्य मेरे सामने उजागर हुआ कि निश्चित ही अप्पा साहब भोसले जिन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध जो बगावत की है उसमें छिंदवाड़ा जिले का भी योगदान हमारे सामने आता है।
गुरुवे जी, जैसा कि हम सीपीएन बेरार की बात करते उस समय हमारे इस क्षेत्र की राजधानी नागपुर और उपराजधानी पचमढ़ी था
जी,
और उसी समय की बात आप इतिहास के पन्नों से निकालकर मोबाइल वाणी के श्रोताओं के लिए लाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बात तक अभी वर्तमान का व्यक्ति नहीं पहुंच पाया। ये महत्वपूर्ण बात आपने बताई। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 1857 के बाद ये छिंदवाड़ा जिले में क्या क्या घटनाक्रम हुए।
जी निश्चित ही अब हम शुरुआत करते हैं छिंदवाड़ा जिले में महात्मा गांधी जी से। जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी का छिंदवाड़ा जिले में दो बार आगमन हुआ है और इस आगमन से कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा जिला क्रांति की अलख में सम्मिलित हुआ और उन्होंने अपने आप को इसमें आहूत किया, क्योंकि सेंट्रल प्रोविंसी एंड बरार की जो राजधानी है मध्य प्रांत एंड बरार की वो नागपुर थी और नागपुर में ही सन 1921 में कांग्रेस का एक महाअधिवेशन हुआ था और इसी महाअधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए महात्मा गांधी जी छिंदवाड़ा में आए थे। क्योंकि यहां पर महात्मा गांधी जी उन दो महान व्यक्तियों से मिलने आए थे जिनका योगदान सर्वोपरि था असहयोग आंदोलन में, जिनका नाम था शौकत अली और दूसरे जो अली बंधु थे वे थे मोहम्मद अली। इन्हें छिंदवाड़ा जिले में कैद रखा गया था और इन्हीं से मिलने के लिए महात्मा गांधी जी का आगमन छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। आगमन के साथ ही जैसा हम देखते हैं कि पूरे छिंदवाड़ा जिले में एक नया उन्माद भर गया था, नया जोश भर गया था और असहयोग आंदोलन जो है वह पूरे छिंदवाड़ा जिले में, छिंदवाड़ा जिले के फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उसमें सम्मिलित हुए थे, जिसमें सर्वश्री साल्पेकर जी, बी आर ढोक, मोरेकर जी, वी एस शर्मा जी, मनोहर खाटे जी, ब्रजलाल वर्मा जी, ऐसे कई अनाम वीर है जो इस मूवमेंट में सम्मिलित हुए थे। इसमें हम यह भी देखते हैं कि इसके पश्चात महात्मा गांधी जी का जो आगमन है, जो दूसरा मूवमेंट है, वो सविनय अवज्ञा का है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पटल पर, जिसका प्रभाव पूरे छिंदवाड़ा जिले में हमें दिखाई देता है। क्योंकि इस समय महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था और हमारे छिंदवाड़ा जिले में दिनकर जी नमक तो बनता नहीं है, ऐसी स्थिति में छिंदवाड़ा जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जंगल कानून को तोड़ा था। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि एक नया मूवमेंट छिंदवाड़ा जिले में हमें दिखाई देता है, वह है जंगल सत्याग्रह का, जिसमें विश्वनाथ साल्पेकर जी के नेतृत्व में नौथल लाखनवाड़ी क्षेत्र में जो रामाकोना एक प्रमुख ग्राम के करीब है यहां जंगल कानून को तोड़ा था और इस जंगल कानून को तोड़ते समय विंग कमांडर बनाए गए थे रघुनाथ भूपे जी और रामाकोना के जो मूल निवासी है उनका भी इस जंगल सत्याग्रह या जंगल कानून को तोड़ने में अहम भूमिका हम मान सकते हैं। छिंदवाड़ा जिले के इस बड़े मूवमेंट में जो सम्मिलित थे उसमें आत्माराम घाटोड़ जी, जिन्हें 1 वर्ष 2 माह की सजा हुई थी और 25 बेटे सजा के तौर पर मिले थे। अब उस समय खुली पीठ पर बेटे मारे जाती थी, चाबुक मारे जाते थे और अत्यंत असहनीय पीड़ा होती थी। इसके पश्चात किशन कोष्टी जी, कुंडलिक निम्बालकर जी, गणपत चौरासे जी, गिरधारी लाल चांडक, गोविंद राम कड़क जी, गंगाधर कुंडे जी, चिंधू जी, आप्पा जी और श्री जगन्नाथ राव, इनकी भी भूमिका हम सर्वोपरि मान सकते हैं
जी।
इसके पश्चात यदि हम बात करें तो पूरे छिंदवाड़ा जिले में, अर्थात सभी जितनी तहसीलें हैं, चाहे वो अमरवाड़ा हो या सौसर हो या पांढरना हो, इन संपूर्ण क्षेत्र से क्रांतिकारी इन मूवमेंट में सम्मिलित हुए थे। इसके बाद महात्मा गांधी जी का तीसरा आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उसके पूर्व झंडा सत्याग्रह, यह एक महत्वपूर्ण अभियान या महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी, जिसमें छिंदवाड़ा जिले का भी अहम रोल था, अहम भूमिका थी। और साथ ही हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में पूरा छिंदवाड़ा जिला सम्मिलित था, जिसमें अर्जुन सिंह सिसोदिया जी, आर के हल्दुरकर जी, श्री गोविंद राम त्रिवेदी जी, श्री देवमन वानखड़े जी, श्री साल्पीकर जी, चोखेलाल मांधाता जी, ये सभी सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित हुए थे। निश्चित ही हम मान सकते हैं कि छिंदवाड़ा जिले की अहम भूमिका इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में थी। एक और बड़ा नाम जो सर्वविदित है वह है श्री बादल भोई जी का। मैं सम्मान के साथ इनका नाम लेता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने
जैसा कि आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बादल भोई जी का नाम लिए
जी,
21 अगस्त 1930 को जब लाखनवाड़ी में घास काटने का आंदोलन हुआ था, उस समय इनकी गिरफ्तारी रामा कोना से हुई थी। इस संबंध इस विषय पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए
जी। जी जी, इस बात पर आने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि श्री बादल भोई जी का जन्म छिंदवाड़ा जिले के परासिया के डुंगरिया पंचायत के तितरा नामक ग्राम में हुआ था
जी।
और इनकी जो मुलाकात है महात्मा गांधी जी की के साथ, वह 6 जनवरी सन 1921 ईस्वी को जब महात्मा गांधी जी छिंदवाड़ा आए थे, उस समय ये महात्मा गांधी जी के साथ मिले थे। और इन्होंने क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करके अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। और इनका जो मुख्य अभियान था वो जल, जंगल और जमीन के लिए था। सन 1923 ईस्वी में, देखिए अब इनकी भूमिका, सन 1923 ईस्वी में अंग्रेजों के जमाने के कलेक्टर भवन का इन्होंने घेराव किया था और सरकारी खजाने को उनके द्वारा लूटने की घटना से अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया था। यहां से अंग्रेज कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध खड़े हो गए। और जब 1930 ईस्वी में, ये बात है 21 अगस्त 1930 ईस्वी की, जब वह छिंदवाड़ा जिले में रामाकोना ग्राम में जंगल कानून को तोड़ रहे थे, क्योंकि वन उत्पाद अधिनियम कानून अंग्रेजों ने बनाया था और इसके अनुसार जंगल के संपूर्ण उत्पादों पर अंग्रेजों का अधिकार था, इसकी बगावत हो रही थी, इसी की खिलाफत हो रही थी। और यही से रामाकोना से बादल भोई जी को कैद किया गया था।
गुरु जी
जी,
आज हम स्वाधीनता दिवस की वर्षगांठ मना रहे और गत वर्ष स्वतंत्रता की आजादी का अमृतोत्सव भी मनाया गया
जी।
क्योंकि जिस स्थल पर यह जंगल सत्याग्रह स्थल है वो उपेक्षित पड़ा हुआ है और वहां पर जनवरी 2020 में जय जगत यात्रा पहुंच चुकी है। विश्व शांति निवारण पुरस्कार से सम्मानित राजगोपाल जी उस यात्रा के माध्यम से वहां पहुंचे थे, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है?
जी दिनकर जी, जंगल सत्याग्रह स्थल निश्चित ही अभी भी उपेक्षित है। उसे जो पहचान मिलनी थी वह पहचान अभी मिली नहीं है, यद्यपि इस हेतु अनेक निजी स्तर पर अनेक संस्थाएं सामने आई, अनेक व्यक्ति सामने आए और उन्होंने प्रयास किया। मैं सिर्फ जंगल सत्याग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, अपितु छिंदवाड़ा जिले में जो भी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित स्थल है उनकी बात कर रहा हूं कि ऐसे स्थलों को निश्चित ही एक स्थान मिलना चाहिए। और इस हेतु अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रशासन के माध्यम से इसको नजर में लाकर इसको संरक्षण प्रदान करना चाहिए।
गुरुवे जी
जी,
आज 15 अगस्त इस अवसर पर
जी
हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे जो वर्तमान में दिशा भूल हो गए, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा?
जी दिनकर, निश्चित ही हमें इस समय शहीद होने की आवश्यकता नहीं है, शहादत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो चुके हैं। अब हमें जो मुक्ति चाहिए वह मानसिक मुक्ति, मानसिक गुलामी की मुक्ति। शासन के द्वारा, संविधान के द्वारा हमें जो अधिकार दिए गए हैं, निश्चित ही वह अधिकार हमारे हैं, लेकिन उसके पूर्व जो कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, उन कर्तव्य का अनुपालन भी हमें करना चाहिए। और इस राष्ट्र के युवाओं को मेरा यही संदेश है कि सबसे पहले वे इंसान बने, इंसान बनकर मानव की सेवा करें। इस राष्ट्र की प्रगति में युवाओं का अहम योगदान है। उस समय भी था जब खुदीराम बोस फांसी पर चढ़े थे और आज भी है। युवाओं के माध्यम से एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है। इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में युवाओं की अहम भूमिका है और मैं अपनी ओर से यही कहूंगा इस राष्ट्रभूमि के लिए कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। सोचता हूँ भारत माँ कुछ और भी दू, सोचता हूँ भारत माँ कुछ और भी दू।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका
जी
कि आपने स्वतंत्रता संग्राम पर छिंदवाड़ा के योगदान पर अपनी महत्वपूर्ण बातें रखी और निश्चित ही आपने वह बातें रखी जो आज के युवा को या आज के पीढ़ी को पता नहीं है और उनसे आपने उन बातों से रूबरू कराया, ये निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। और अंत में न्याय का विधान हो, सबका हक समान हो, सबकी अपनी हो जमीन, सबका हो आसमान, इन्हीं शब्दों के साथ स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को ग्रामवाणी और मोबाइल वाणी परिवार की ओर से हम हार्दिक शुभकामनाएं देते और आपका पुनः एक बार धन्यवाद करते कि आपने अपनी महत्वपूर्ण स्वाधीनता दिवस पर बातें साझा करने में अपना योगदान दिया।
जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।